हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग के समझाने पर तारा ध्रुव से शादी करने के लिए मान गई थी, या यूं कहें कि उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। युग तारा को दोबारा तैयार करके नीचे शादी के मंडप में पहुंचा। जहां एक तरफ मंडप में तारा और ध्रुव की शादी की रस्में चल रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ मौका देखकर याशी एक बार फिर मान्या से मिलने पहुंच गई थी। थोड़ी देर मान्या के साथ समय बिताने के बाद याशी जब उसके कमरे से बाहर निकल रही थी, तब युग ने उसे देख लिया था। याशी ने अपनी तरफ से बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन युग के सामने कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि युग ने याशी को कुछ नहीं कहा और उसने याशी को कृषा के पास छोड़ा और फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिससे उसे पता चला कि याशी पहले भी मान्या से मिलने के लिए गई थी। ये देखने के बाद युग को और भी गुस्सा आ रहा था। इस वक्त उसके कदम सीधे मान्या के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही युग मान्या के कमरे में पहुंचा, उसे देखते ही मान्या डरकर कांपने लगी थी। ये मुझे मार देगा प्रतिभा, प्लीज सेव मी, मान्या घबराते हुए बोली। प्रतिभा युग के सामने नजरें झुकाकर खड़ी थी। युग की निगाहें मान्या पर टिकी हुई थीं। उसने तेज आवाज में कहा, कमरे से बाहर जाओ प्रतिभा, और दरवाजा बंद कर देना। इस एरिया के एंट्रेंस पर जाकर ध्यान रखो कि कोई यहाँ की तरफ ना आए। जी सर, प्रतिभा ने जल्दी से जवाब दिया और वो कमरे का दरवाजा बंद करके जाने लगी। नहीं नहीं, मुझे इसके साथ अकेला छोड़कर मत जाओ, ये मुझे मार देगा, मान्या उसके पीछे से चिल्लाने लगी। मान्या ने प्रतिभा के पीछे दौड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन युग के कहने पर प्रतिभा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। मान्या जोर जोर से दरवाजे को पीटे जा रही थी। वहीं युग के चेहरे के भाव इस वक्त बेइंतहा सर्द थे। न जाने कितने वक्त के बाद वो मान्या के सामने आया था। उसे देखते ही युग के जख्म फिर से हरे होने लगे थे। वो मान्या ही थी जिसकी वजह से युग की मॉम छाया कपूर की मौत हुई थी। मान्या ने युग को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचाने के लिए मान्या की बेटी बंधन बीच में आ गई थी। बंधन को हमेशा से युग ने इन सब मामलों से दूर रखा था, लेकिन मान्या की वजह से वो मारी गई। उसके बाद युग की नफरत मान्या के लिए और भी बढ़ गई थी। बंधन और छाया के जाने के बाद अब जिस तरह से मान्या याशी के साथ खुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, युग को उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। मान्या जब दरवाजा पीट पीट कर थक गई और उसे लगा कि कोई गेट खोलने नहीं आने वाला था, तो वो युग की तरफ पलटी। प्लीज मुझे कुछ मत करना, अब मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे मत मारना, मान्या रोते हुए बोली। युग बस बिना कुछ बोले उसकी तरफ देख रहा था। अचानक युग जोर जोर से हंसने लगा था। मान्या हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अचानक युग हंसते हुए रुक गया। उसने मान्या की तरफ देखकर सिर हिलाया और सर्द आवाज में कहा, क्या लगता है मान्या राणा, तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन युग राणा को नहीं। जहां लोगों की सोच खत्म होती है, वहां मैं सोचना शुरू करता हूँ। मान्या हैरानी से युग की तरफ देखने लगी। फिर उसने नजरें चुराते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया था। युग मान्या के पास आया और उसका चेहरा कसकर दबाते हुए कहा, ये जो पागलपन का दिखावा करके इतने सालों से इस कमरे में अपनी मौत से बची हुई हो, उसको जितना जारी रखोगी उतना ही तुम्हारा फायदा है। पर गलती से भी मेरी बेटी की तरफ नजर उठाकर मत देखना, वरना दुनिया में कुछ भी देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मुझे दर्द हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, मान्या ने सुभगते हुए कहा। वो बच्चों की तरह बात कर रही थी। समझ नहीं आ रहा तो अनजान बने रहने में ही भलाई है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। मेरी याशी को टारगेट करने का ख्याल तक अपने दिमाग में मत लाना। अगली बार बात करने नहीं आऊंगा, युग बोला। इतना कहकर युग ने मान्या का चेहरा छोड़ दिया था और वहां से जाने लगा। उसे जाता देखकर मान्या के चेहरे पर राहत के भाव थे, लेकिन तभी युग अचानक पलटा और उसने मान्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। तुम ये सोच रही होगी कि मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग देकर क्यों छोड़ रहा हूँ। चाहूँ तो अभी तुम्हारी जान ले सकता हूँ, लेकिन नहीं मान्या राणा, अभी तो तुम धीरे धीरे ठीक होने लगी हो। उस दर्द को तुम्हें महसूस करना होगा कि कैसे तुमने अपने हाथों से अपनी ही बेटी की जान ले ली। अगर तुम अपने पागलपन में भूल भी जाओगी तो मैं आकर तुम्हें याद दिलाऊंगा कि कैसे तुमने अपनी मासूम बेटी को अपने ही हाथों से बेरहमी से मार डाला। भूल गई क्या, जब बंधन मुझे बचाने के लिए बीच में आ गई थी, पूरी 3 गोलियां चलाई थी तुमने उसके ऊपर, बोलते हुए युग ने अपने दिल पर उंगली रखी और कहा, ठीक इसी जगह सीने पर। क्या सोचा था कि अगर निशाना सही लगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन किसने सोचा था कि तुम्हारी बेटी मर जाएगी। जैसे जैसे युग बोल रहा था, मान्या के दिमाग में हर एक सीन फ्लैशबैक की तरह घूमने लगा था। यही युग के सजा देने का तरीका था। मान्या को सजा देने के लिए वो चाहता तो इस वक्त उसे मार सकता था, लेकिन उसने सजा के तौर पर मान्या की जिंदगी चुनी ताकि वो इस बात को हमेशा याद रखे कि उसके बुरे कामों का नतीजा उसकी बेटी को भुगतना पड़ा था। युग आगे कुछ कहता उससे पहले मान्या जोर से चिल्लाई, चुप हो जाओ युग, मत बोलो ये सब। बंधन, बंधन बिल्कुल ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो। मान्या उसके बाद जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी थी। युग ने उसे वैसे ही वहीं पर छोड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। तो तुम ठीक हो रही हो, गलती से याशी तुम्हारे पास पहुंची थी और उसका चेहरा और आंखें देखते ही तुम्हें समझ आ गया था कि वो मेरी बेटी है। इस बार तुमने गलत जगह हाथ डालने की कोशिश की है मान्या राणा। तुम चाहे अपने पंख कितने भी फैला लो, लेकिन तुम्हारी हदें मैं तय करूंगा और तुम्हारी सीमाएं इस कमरे तक ही रहेंगी। मैं तुम्हें कभी आजादी नसीब नहीं होने दूंगा, युग ने मन ही मन कहा। जैसे ही वो उस एरिया के एंट्रेंस से बाहर निकला, प्रतिभा जल्दी से दौड़कर कमरे के अंदर चली गई। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मान्या जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। प्रतिभा को देखते ही मान्या उठकर उसके गले लग गई। वो रोते हुए बोली, उसकी वजह से मेरी बेटी मर गई और मैं इतने सालों से तकलीफ में थी। आज जब बात खुद की बेटी पर आई तो उसे गुस्सा आ रहा है। फिर मेरा क्या प्रतिभा, मैं भी तो इतने सालों से ये तकलीफ झेल रही हूँ। शांत हो जाइए मासी, अभी सही टाइम नहीं आया है उससे बदला लेने का। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। जो उसने हमारे बंधन के साथ किया था वही उसकी बेटी के साथ होगा, प्रतिभा उसे समझाने लगी। वो कोई और नहीं, मान्या की ही बहन की बेटी थी। प्रतिभा के आने के बाद से ही मान्या की हेल्थ में थोड़ा सुधार होने लगा था। मान्या ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और धीमी आवाज में कहा, उसे शक हो गया है कि मैं ठीक हो रही हूँ। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हमें यहाँ से जाना होगा। कॉल करो उसे और बोलो कि हमें उसकी हेल्प की जरूरत है। नहीं मासी, हम पिछले इतने सालों से हम एक सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और बहुत मुश्किल से हमें युग की कमजोरी का पता चला है। हम याशी को यहाँ से लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे, चाहे बदले में हमें कुछ भी सहन करना पड़े, प्रतिभा बोली। मान्या ने उसकी बात पर हामी भरी। याशी जब पहली बार घर में आई थी तभी प्रतिभा ने उसके बारे में मान्या को बता दिया था। उस दिन से ही मान्या याशी का इस्तेमाल करके युग से बदला लेने का सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ युग मान्या से मिलने के बाद सीधा शादी के मंडप में पहुंचा। ध्रुव और तारा की शादी हो चुकी थी और इस वक्त वे सबका आशीर्वाद ले रहे थे।
वहीं युग को देखते ही कृषा सीधा उसके पास गई। थोड़ी देर पहले याशी को लेकर युग ने उसे डांटा था, अभी भी वो काफी गुस्से में लग रहा था। क्या हुआ, किसी ने थोड़ी देर पहले बिना वजह मुझे डांट लगाई थी और अब भी मूड सड़ा हुआ है, कृषा ने हल्के लहजे में पूछा। बाद में बात करेंगे, वन मोर थिंग, हम आज की आज ही हमारे घर जा रहे हैं। आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी। ध्रुव और तारा भी साथ घर चलेंगे। तारा से जुड़ी जो भी रस्में हैं निपटाओ, मैं याशी को लेकर घर के लिए निकल रहा हूँ, युग ने बिना किसी भाव के कहा। लेकिन युग, कृषा युग से उसके गुस्से का कारण पूछने वाली थी, लेकिन उसकी पूरी बात सुने बिना ही युग वहां से चला गया। याशी इस वक्त अलीशा के साथ खड़ी हुई थी। युग ने वहां जाकर सीधा याशी का हाथ पकड़ा और कहा, हम हमारे घर चल रहे हैं। लेकिन डैड, ये हमारा घर ही तो है, याशी ने मासूमियत से कहा। नहीं, ये हमारा नहीं, तुम्हारे चाचू का घर है, हमारा घर अलग है, युग बोला। याशी के लिए ये सब बातें नई थी। वो उलझन भरी निगाहों से युग की तरफ देख रही थी। वहीं उसकी बेरुखी भरी बातें सुनकर अलीशा ने कहा, चाचू आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो, वैसे भी शादी के सारे फंक्शन खत्म नहीं हुए हैं, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो याशी को यहाँ रहने दीजिए। अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो तुम भी मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगी, चलो याशी, युग ने जवाब दिया और याशी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। कृषा दूर से हैरानी भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी। युग के जाते ही अलीशा सीधे कृषा के पास गई। आपको नहीं लगता कि चाचू का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अजीब होता जा रहा है? थोड़ी देर पहले वो तारा भाभी के साथ बिल्कुल खुश थे, उनका हाथ पकड़कर उन्हें लेकर आए थे, और अब इतनी ही देर में इतना ज्यादा गुस्सा, कुछ हुआ है क्या मासी, अलीशा ने कृषा से पूछा। कुछ तो हुआ ही होगा, बस बता नहीं रहा है। युग चाहता है कि तारा की शादी के बाद की कुछ रस्में यहाँ से हों और उसके बाद तारा और ध्रुव को लेकर मैं घर पहुँच जाऊँ। अचानक उसे घर की याद क्यों आने लगी मुझे नहीं पता। मैं तारा के पास जा रही हूँ और उसे आगे की जो भी रस्में हैं वो करने का बोल देती हूँ, कृषा ने जवाब दिया। कृषा को युग की फिक्र हो रही थी और उससे बात भी करनी थी, पर फिलहाल उसे युग के कहे मुताबिक तारा और ध्रुव के गृह प्रवेश की रस्में पूरी करवानी थी। इसके लिए सारा ने पहले ही सारी तैयारी करवा रखी थी। शादी का मंडप गार्डन एरिया से लगा था और उसके बाद वहां ध्रुव और तारा के गृह प्रवेश की रस्में हो रही थी। इन सब के बीच तारा बिल्कुल शांत थी, उसकी नजरें युग को ढूंढ रही थी जो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। गृह प्रवेश की रस्म होते ही कृषा ने कहा, फिलहाल मैं ध्रुव और तारा के साथ घर जा रही हूँ, बाकी रिसेप्शन पार्टी और अरेंजमेंट के बारे में कल डिसाइड करते हैं, मुझे युग का मूड अपसेट लग रहा है। सारा ने उसकी बात पर हामी भरी। कृषा मौलिक के साथ युग के विला जाने के लिए निकल गई थी। वहीं ध्रुव और तारा गाड़ी में एक साथ थे। उनकी गाड़ी वीर ड्राइव कर रहा था और बीच में पार्टीशन लगा हुआ था। जब से तारा की ध्रुव से शादी हुई थी वो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। ऊपर से शादी के बाद जब आशीर्वाद लेने की बारी आई तब तारा ने मौलिक के पैर तक नहीं छुए थे। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा, कब तक इसी तरह इग्नोर करने वाली हो, वैसे भी मुझे तुमसे बात करने का और तुम्हारी शक्ल देखने का कोई खास शौक नहीं है। तो फिर क्यों बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी हूँ और तुम भी चुपचाप बैठो, वैसे भी आई नीड सम पीस, तारा ने चिढ़कर कहा। अब उसे ध्रुव के सामने किसी तरह की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी, वो बिल्कुल जेन्युइनली ध्रुव के साथ पेश आ रही थी जैसा कि उसका बर्ताव था। चलो तुम्हारा असली चेहरा सामने आने के बाद तुम्हारा बिहेवियर तो पता चला, वरना तुम्हारी शुगर कोटेड बातें सुनकर इरिटेशन होती थी। मुझे बस ये कहना था कि गलती से भी ये मत सोच लेना कि इस शादी के बाद मैं तुम्हें मेरी लाइफ में किसी तरह की जगह देने वाला हूँ, ध्रुव ने तंज भरे लहजे में कहा और अपने कान में एयरपॉड्स डाल लिए ताकि तारा कुछ कहे भी तो उसे सुनाई ना दे। तारा ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो लोग घर पहुंच गए थे। कृषा भी उनके साथ ही गाड़ी से बाहर निकली थी। उसने तारा की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम्हें पता है ध्रुव का रूम कौन सा है, वहां जा सकती हो। फिलहाल तुम्हारे कपड़े और बाकी सामान नहीं मंगाया है तो एडजस्ट कर लेना। कृषा ने तारा को ध्रुव के कमरे में भेज दिया था। इससे पहले कि ध्रुव इस बात पर कृषा से बहस कर पाता, कृषा ने उसे इग्नोर किया और वो सीधा युग से बात करने जाने लगी, क्योंकि शाम से ही उसका बर्ताव काफी अजीब था। ऊपर से वो याशी को लेकर इस तरह प्रोटेक्टिव हो रहा था जैसे हर दूसरा इंसान याशी का दुश्मन हो। ऑथर्स नोट। हेलो लवली यूट्यूब लिसनर्स, मुझे पता है आपको इस कहानी का बेसब्री से इंतजार रहता है, पर काफी दिनों बाद न्यू पार्ट आया है। एक्चुअली ऐप के सिस्टम इस नॉवल के 20 पार्ट्स की ऑडियो एक साथ बनाता है, तो एक साथ 20 पार्ट्स लिखना आसान नहीं होता। आप चाहें तो स्टोरी मेनिया ऐप डाउनलोड करके ऐप पर पढ़ सकते हो। फिर भी कोशिश करूंगी कि आगे आपको इंतजार ना करना पड़े। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सुनते रहिए और कॉमेंट्स के जरिए अपना प्यार जरूर दिखाएं।